तो मसीह में बुलाए हुए बहनों और भाई, हम तो जारी रखते हैं हमारी क्लास नंबर 19 और कलीसिया की पढ़ाई का तीसरा और अंतिम भाग। तो हमने छोड़ा था कि 12 तरह के लोग 12 महीनों में पैदा होते हैं, इसलिए 12 संख्याएं भी हैं। और जो 12 12 हजार की बात आज हम करने जा रहे हैं, वो है 12 12 12 हजार के सद्भाव के 12 तरह के लोग। प्रेरित 12 थे, ठीक है, और 12 12 हजार एक एक ग्रुप में है, ऐसे टोटल हो जाएंगे 1,44,000। ठीक है, तो इस सद्भाव को, 12 तरह के सद्भाव की पढ़ाई आज हम करने जा रहे हैं। जो हम देखेंगे उत्पत्ति 49वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय। तो उत्पत्ति में सबसे बड़ा बेटा जो था, जो 49 अध्याय उसका तीसरा वचन पढ़े।
हे हारून, तू मेरा जेठा, मेरा बल, मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है।
तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था रूबेन, सही ना? रूबेन ना। लेकिन अगर आप 7वें अध्याय में जाओ, प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में, उसमें पहला कौन सा है?
इसके
7 का 1 से ही पढ़ लो।
बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले।
7वां प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, आगे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ।
फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को, जिससे परमेश्वर की मोहर के लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आगे देखा, उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें धरती और समुद्र की हानि करने को अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों
ना,
से।
5वां वचन पढ़िए, 4 पढ़िए पहले और उसके बाद 5, 4 और 5।
जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई।
हाँ
यहूदा के गोत्र में से
देखो, उधर सबसे पहले किसका नाम आ रहा है और यहाँ पे किसका नाम आ रहा है?
जिन पर मोहर दी गई उनकी गिनती
सुनकर
इज़राइल की संतानों की सब।
5वें वचन में है वो,
यहूदा
यहूदा यूदा। तो यहां पे ऐसा क्यों, अंतर क्यों? देखा, ये दर्शन।
गोत्र में से 12,000 पर गाद के गोत्र में से 12,000।
तो यहां पे खाली एक का नाम ही नहीं बदला, बल्कि ऑर्डर भी उल्टा हो गया है। जो उधर पहले था वो इधर कितने नंबर पे है,
दो सेकंड नंबर है,
सेकंड या थर्ड, इतने नंबर पे है।
सेकंड
ठीक है, ऐसे पूरा उलट पुलट है। तो इसलिए इसराइल की बात नहीं हो रही है, वो कलीसिया की बात हो रही है। और इसमें सबसे पहले यहूदा, यहूदा होने का कारण पता क्या है? यहूदा होने का कारण, प्रभु यीशु मसीह कौन से गोत्र से थे? यहूदा, यहूदा से थे। ठीक है, यहूदा से थे प्रभु यीशु मसीह। इसी, ये पढ़ लो बात, प्रकाशित वाक्य 5 का 5।
इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख योदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7ों मोहरों तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है।
देखा, तो ये शेर कौन है? यूदा का, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, तो प्रभु इसलिए यूदा सबसे पहले है क्योंकि कलीसिया में सबसे पहले कलीसिया का जो हेड है वो इस गोत्र से था, यूदा। तो यूदा इसलिए प्रकाशित वाक्य में सबसे पहले है, तो रूबेन उसके बाद है। तो चलो हम सबके नाम पहले पढ़ेंगे, उनका मतलब जानेंगे।
रूबेन तो सबसे छोटा माना जाता है ना, और जो देखते
हैं नहीं, ये याकूब का सबसे बड़ा पुत्र था, याकूब का सबसे बड़ा पुत्र पहला रूबेन। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य 49 में 3 पढ़िए। अभी एक एक करके नाम समझेंगे, 12 के 12 के नाम, उनका अर्थ, और 49 उत्पत्ति 49 का 3।
चलो ठीक है। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है।
बल, एक्सेलेंसी ऑफ डिग्निटी एंड द एक्सेलिंग पावर, मतलब पूरी तरह से एक्सलेंट, समर्था में, ठीक है, ताकत में, सब में अच्छा। तो ये ऐसे लोग हैं 12,000। अभी इसका मतलब क्या है मुझे आपको बताना है। ये वो लोग हैं जिनके पास 5 के 5 टैलेंट हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25:20 में बोला ना, जिसके पास 5 है, जिसके पास 3 है, जिसके पास 1 है। तो ये 5 टैलेंट ज्यादा से ज्यादा हम रख सकते हैं, एक किसी के पास 5 टैलेंट हो सकते हैं। तो ये जो रूबेन वाले लोग हैं, 5 टैलेंट वाले लोग हैं, वो होंगे 12,000। वो 5 टैलेंट कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले टाइम, समय, जो परमेश्वर को अपना समय देता है। एक एक गुण ये है, टैलेंट गुण ये है। दूसरा धन, जो परमेश्वर के लिए अपना धन लगाता है। तीसरा हेल्थ, यानी सेहत, हेल्थ इज वेल्थ बोलते ना, जो परमेश्वर के लिए अपनी सेहत देता है। चौथा दिमागी गुण, अगर मेरे में मेंटल टैलेंट्स है, जैसे सिंगिंग का है या राइटिंग का है, कुछ भी परमेश्वर के लिए लगाते। और पांचवा है पब्लिक स्पीकिंग कैपेबिलिटी, मतलब मैं जनता को बोल के प्रभावित कर सकता हूँ वचन के द्वारा। तो ये 5 के 5 टैलेंट वाले हैं 12,000 लोग, यानी कलीसिया में ऐसे 12,000 लोग होंगे। 144,000 में से पहला ग्रुप 5 के 5 टैलेंट रखने वाला 12,000 लोग। और चौथा वचन पढ़ लो इसी का ही, इसका मतलब क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी। हाँ,
तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा।
तो पता क्या है, ये जो 5 टैलेंट रखने वाले ये होते हैं ना, इनका सबसे ज्यादा खतरा होता है गिरने का, सबसे ज्यादा खतरा। कि जब पता चल जाए मुझे मैं ज्ञान में बढ़ गया हूँ, घमंड आने का बहुत खतरा है। ठीक है, तो अपने टैलेंट को का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, ये गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बोलता है तू अनस्टेबल है, जैसे पानी ठहरता नहीं है ना, ऐसे अनस्टेबल है। और ये जो बात इसके बारे में लिख रही, यही लिखी जा रही है कि कई बार ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अपना खुद का चर्च स्थापित करने का। जब इनको पता चल गया हाँ मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं, मेरे पीछे मेरी तो बहुत मानते हैं लोग, घमंड में बढ़कर, तो ये ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे, बट वो तो वो गिनती में नहीं आएंगे, उनसे कॉल छीन दी जाएगी। लेकिन जिन्होंने 5 के 5 टैलेंट पूरी वफादारी के साथ मृत्यु तक इस्तेमाल करते रहे, वो होंगे उस 12,000 में से एक। तो ऐसे होंगे 12,000। उसके बाद दूसरा जो पुत्र है, पढ़ो 49:5, सिमियोन
और लेवी तो भाई भाई हैं। उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं।
तो ये दूसरा पुत्र है सिमियोन। तो सिमियोन इसका मतलब क्या है, ये भाई भाई है और इनकी इनके हथियार, इनकी तलवारें तो उपद्रव है। इसका मतलब
अटैक करने वाले।
ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इमोशनली बहुत मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली इमोशंस में रहते हैं, फीलिंग्स में रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा मान जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ था, ये सिमियोन और लेवी, क्या हुआ कि इनकी बहन थी एक दिना, तो दिना को सेकेमाइट्स, उत्पत्ति 34 में अध्याय में पता चलता है, सेकेमाइट्स ने दिना पे अटैक करने की कोशिश की, और ये लेवी और सिमियोन ने क्रोध में आके उनको मार
बाद में
दिया।
हत्या कर दी
हाँ
उसी से बाद में रही थी, ऐसा सुना है
हाँ
मैंने।
हाँ तो ये सिमियोन, सिमियोन नाम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले उत्पत्ति 29:23 में पढ़ो।
सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसे
33 33 33
33 फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। शिमोन का मतलब अप्रिय।
एक्चुअल में हिंदी में समझ नहीं आता, इंग्लिश में है, द लॉर्ड हैथ हर्ड, हर्ड मीन सुना। हाँ सुना। हाँ हर्ड हर्ड। तो सिमियोन नाम का मतलब होता है सुनना, सुनना, सुनने का कैरेक्टर, जिनके समझदारी के कान है, जो सुनते हैं, जो जिंदगी के मुश्किल तजुर्बों से और मुश्किलों का सामना करते करते दूसरों के प्रति दयाबान हो गए हैं, दूसरों के प्रति क्या बोलते हैं, दूसरों के प्रति जो सब्र रखते हैं, ठीक है, मतलब उनका मन समझता है और वो दूसरों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों की मुश्किल, दूसरों के कष्ट, दूसरों के दुख सुनते 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 हैं, सुनते हैं, तसल्ली देते हैं। ऐसे होंगे 12,000 जो सुनने वाले, ठीक है, जो सिमियोन कैरेक्टर। उसके बाद तीसरा पुत्र है लेवी। लेवी नाम का मतलब क्या होता है? 34 में पढ़ो, 29:34।
फिर
हाँ
वे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा।
मिल जाएगा, मिल जाएगा मतलब जुड़ना, बी ज्वाइंड, जुड़ जाना, ठीक है, इसलिए मैं उसका नाम क्या रखूंगी?
लेवी।
लेवी। तो लेवी का मतलब होता है जुड़ना। तो ये ग्रुप कौन है? ये 12,000 वो लोग हैं, हर हर एक के 12-12,000 है, ये बात याद रखना। दो 12,000 हमने कर लिए, 24,000 हो गए, 1,44,000 में से बाकी कितने रह गए? 1,20,000, क्योंकि 24,000 रूबेन करेक्टर वाले, रूबेन करेक्टर वाले वो जो पांच के पांच टैलेंट रखते हैं, और उसके बाद सिमियोन टैलेंट का, सिमियोन वाले कौन से? जो सुनते हैं दूसरों की मुश्किल परेशानियां सुनते हैं। तीसरा जो स्वभाव है कलीसिया के ग्रुप का, 12,000 लोगों का, वो है जुड़ने का। ये जुड़ने का मतलब क्या है? ऐसे लोग, लेवी, लेवी आपको याद होगा, लेवी कौन थे? लेवी,
याद रखूंगा
हाँ,
पर
लेवी के थे, लेवी परमेश्वर के मंदिर में रहते थे,
वो
और
जो बंटवारे में छूट
फुल
गया था वो
हाँ,
परमेश्वर ने उनको वो दिया था
तो
कि तुम
लेवी
मेरे
वो
पास।
है जो परमेश्वर की सेवा के काम में फुल टाइम जुड़ जाते हैं, ये शादियां नहीं करते हैं, ये फुल टाइम सर्विस में हैं, ये फुल टाइम वर्कर्स हैं। आमतौर पे ये ग्रुप में होते हैं जो शादी नहीं करते हैं, परमेश्वर के काम के कारण, परमेश्वर के सत्य के लिए जो शादी नहीं करते, वो आते हैं लेवी ग्रुप में। तो ये हो गए कितने? 36,000। समझ में आ रहा है ना अभी? एक लाख चौवालीस हजार में से 12-12 हजार के बंटवारे हैं, 12, और जिसमें से 36 हजार ऐसे हैं। तो ऐसे ही सारे 12 के 12 कैरेक्टर हैं और उनके 12-12 हजार। उसके बाद चौथा जो ग्रुप है जूदा, जूदा पढ़ते हैं, जूदा के बारे में। जूदा क्या है? जूदा उत्पत्ति 49, उसका 8, एक इधर हाथ रखो एक उधर हाथ रखो, 30 और वो
49 का
जी
49 का 8। हे यूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे।
तो तेरे भाई तेरा क्या करेंगे? धन्यवाद। तो जूदा का स्वभाव क्या है कि उनका जीवन और उनके काम परमेश्वर को महिमा लेके आते हैं और वो पूरी तरह से अपने आप को इनकार करते हैं। तो ऐसे मेंबर, ऐसे ग्रुप के मेंबर पता कौन कौन से हैं? उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह, प्रेरित पौलुस, जिनके काम और जिनके जीवन परमेश्वर के लिए क्या लेके आता है? महिमा लेके आता है। ठीक है, तो ए जूदा के काम से क्या आती है? धन्यवाद, प्रेज, इंग्लिश में है प्रेज। प्रेज मीन्स प्रशंसा, प्रशंसा मिलती है। तो जैसे और भाई बहन भी है जो गाना लिखते हैं या गाते हैं या कविताएं लिखते हैं परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, जिससे जिससे परमेश्वर को प्रशंसा मिलती है, उस ग्रुप में आ जाते हैं जूदा। ऐसे भी 12,000 लोग हैं और इसके मेन मेंबर हैं प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित पौलुस, जिनके जीवन से परमेश्वर को बहुत ज़्यादा महिमा मिली। ठीक है, उसके बाद पांचवा ग्रुप 49:13,
जबलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा, वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका पारला भाग सिदोन के निकट पहुंचेगा।
तो जबून नाम का मतलब क्या होता है? जबलून, जबलून का मतलब होता है, उत्पत्ति 30:20 में पढ़ो,
तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, इसलिए उसने उसका नाम जबलून रखा।
तो जबलून का मतलब होता है बना रहना, मतलब इंग्लिश में है ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग मतलब रहने की जगह। 30:20 जबलून का मतलब होता है, जबलून शेल ड्वेल एट, ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है रहने की जगह। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, आत्मिक लोग, सत्य वाले वो लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा में चलते चलते जिनका कोई ठिकाना नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे चलते चलते इनका जीवन खत्म हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस ऐसे ग्रुप के बारे में पता क्या बोलते हैं? बोलते लूंबड़ियों के तो वो घर हैं, पंछियों के आलने हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के पास सर ढकने की भी जगह। तो ऐसे ग्रुप जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, चलते 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 जिनका जीवन खत्म हो जाता है, जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं रहता है, ऐसे लोग हैं 12,000। और ये प्रभु यीशु मसीह के उस वायदे पे ध्यान हमेशा विश्वास रखते हैं जिसमें बोला मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए क्या करने परमानेंट जगह तैयार करने। ये टेम्पररी जगह है, परमानेंट जगह पे जो भरोसा करते हुए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चलते जाते हैं वो ऐसे हैं 12,000 कलीसिया में लोग। ठीक है, तो उसके बाद छठा इसाकार 49:14 में देख लो,
इसाकार एक बलवंत गधा है।
इसाकार को बोला क्या बोला, गधा, गधा है हाँ?
जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है, दुबका रहता है।
हाँ, तो जो गधे का काम, गधे को क्यों यूज किया जाता है, गधे को बोला सॉरी इसाकार को बोला गधा, गधे का क्या खासियत होती है, बड़ा हलीम, नम्र, ऐसे नीचे डाल के चलता जाएगा। हाँ, तो इसका 15 भी पढ़ लो।
उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का काम करने लगा।
तो आजकल गधा जो है ये बड़ा आदर योग नाम नहीं है, क्योंकि हम जब कोई गलत काम कर, अरे गधे क्या कर रहा है, हम लोगों की नजर में गधा, लेकिन गधा बड़ा बाइबल में बड़ा आदर में जानवर है। प्रभु यीशु मसीह ने जिसको चुना गधे पे बैठे थे क्योंकि उसके गुणों की कारण। तो गधा इसाकार कैरेक्टर है, एक गधा, गधे का मतलब होता है बोझ ढोने का काम। ठीक है, बोझ ढोने का काम मतलब दूसरों का बोझ उठाना और बिना बुड़बुड़ाए नम्रता से सबर से चलते जाना। सही, तो ये वो भाई बहन हैं जो सेवा का काम करते हैं बिना थके, परमेश्वर के काम की सेवा में बिना थके लगे रहते हैं। इनका काम दिखता नहीं है, दिखता किसका है, पास्टर का काम, लेकिन बिहाइंड पीछे जो दूसरे लेबर का काम करने वाले हैं या लिखने वाले या टाइपिंग करने वाले ऐसे कुछ भी हैं जो तैयार करने वाले, ये नोट्स तैयार करने वाले, वो मेन काम वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका काम क्या है, सेवा का, दास का काम, भाइयों का बोझ उठाने का काम, तो वो बिना थके बिना ऐसे करते जाएंगे। तो ऐसे भी है कितने, 12,000। तो ये इनके बारे में पौलुस बोलता है इस पे दो वजन है, इसी में ना बोला दो बोझ है इस पे। ठीक है, इस 14वें वचन में पढ़ लो, दो वो बोझ पढ़ लो।
एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दुबका रहता है, उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश के,
पता नहीं हिंदी में सच्ची इतना घोची की हुई है, इंग्लिश में पढ़ो सिस्टर, टू बर्डन्स लिखा है
14 में।
हाँ जी, 14 में।
इसाकार इज ए स्ट्रॉन्ग डंकी क्रोचिंग बिटवीन द शिप फोल्ड, ही सॉ दैट ए टेस्टिंग प्लेसर वन फुट।
एक्चुअली ऐसा है, इसाकार इज ए स्ट्रॉन्ग एस, यानी काउचिंग डाउन बिटवीन टू बर्डन, काउचिंग डाउन बिटवीन टू बर्डन,
बर्डन लिखा
नहीं, लिखा
नहीं, शी फोल्ड लिखा है, शी फोल्ड, शी साउ टेसल रेस्टिंग
प्लेस 49:14
Iskar is a strong donkey lying down between two burdens.
So between two burdens, दो बोझ के बीच दबा हुआ है। ये दो बोझ का मतलब क्या है, दो बोझ का मतलब आप देख लो, पहला तिमोथी 4:16। हाँ वही, अभी क्या करें सिस्टर, अभी इतनी गड़बड़ में मैं बताता हूँ दो बर्डन का मतलब क्या है। पहला तिमोथी 4:16 पढ़ो। चार का सोलह, चार का सोलह,
अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा।
अपने पहला तो अपना बोझ है, बाद में दूसरों का भी बोझ है, तो ये दो बर्डन है ये उठाता है। ठीक है, ये क्या करता है बिना थके, खुद तो क्लास में जाना ही है, दूसरों को भी आओ 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 चलो उनको भी लेके चलता है, तो ऐसा उदाहरण के तौर पे। तो ये है दो बोझ, अपनी उदारता तो करता ही है, दूसरों की उदारता का कारण भी बनता है। ठीक है, अभी सातवां नाम, सात ऐसे भी 12,000 लोग होंगे जो ऐसे आकार गधे वाला, मतलब जो जो सेवा वाला काम है। तो सातवां जो ग्रुप है मनुष्य, मनुष्य आपको याद होगा किसकी जगह ली थी, दान की। तो ये मनुष्य क्या है ये पढ़ते हैं, पहले पहले दान देखते, दान का क्या था, दान को क्यों हटाया। उत्पत्ति 49:16-17,
दान इज़राइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में एक का मार्ग में का एक सांप, दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा, जो घोड़े की नाल को डसता है जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है।
तो ये वो ग्रुप है जो अपने भाइयों का न्याय करता है। अभी भाई यहाँ पे हम एक्चुअल में हम सबके, अगर हम बताएं तो हम भाई पता किन को मानते हैं, भाई वो जो सत्य वाले भाई जिनके पास सत्य है, जो वचन वाले सत्य, जो वचन वाले सच्चे वचन वाले, परमेश्वर के वचन वाले बहुत है लेकिन सच्चे वचन वाले हैं असली भाई। ठीक है, वाचा बांधे हुए, सिंपल शब्दों में जो वाचा बांधे, तो उनका न्याय करते हैं, उनको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं और उनकी गलतियों को बड़ा न्याय करते हैं। तो ये जो लोग हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। हम तो असली न्याय तो तब होता है ब्रदर जब हम, मैं आपका दिल जानता हूँ कि आपका दिल में क्या है, तब होगा ना कि आपकी इंटेंशन क्या है ना, आप क्या सोचते हो अंदर से। न्याय तो मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं अंदर आपका जानता हूँ, लेकिन जब तक मैं अंदर ही नहीं जानता तो मैं कैसे न्याय कर सकता हूँ। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हम सब एक दूसरे का बहुत न्याय करते हैं शारीरिक तौर पे, जो काम कोई गलती कर देता है। तो ये दान का कैरेक्टर प्रेरितों में किसका था, यूदा। यूदा ऐसा ही करता था, यूदा धोखेबाज था, यूदा इस्कोरियत, जो प्रभु यीशु मसीह को, और उसमें और क्या है गुण बोलते हैं, ये अपने भाइयों का न्याय करता है और दान सांप की नाए उनकी एड़ी को क्या करता है, डसता है। एड़ी को डसने का क्या मतलब है, और इसमें घोड़ा, घोड़े की एड़ी ना बोला, घोड़ा, घोड़ा क्या होता है, घोड़ा,
घोड़े की नाली को डसता है।
तो घोड़ा, घोड़ा एक चिन्ह है। ठीक है, ये पढ़ो जरा किसका चिन्ह है घोड़ा, यशाया 31:1।
है उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं।
हाय उन पर जो घोड़ों और रथों पे चलते हैं, अभी घोड़े का मतलब क्या होता है? तीसरे वचन में पढ़ लो ये बात।
मिस्री लोग ईश्वर नहीं मानते, मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही है, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है।
तो घोड़े का मतलब होता है संसारिक शिक्षाएं और संसारिक विश्वास जो शारीरिक है, जो आत्मिक नहीं है। तो घोड़े का क्या मतलब है? शारीरिक विश्वास और शारीरिक शिक्षा जो इंसान की है, ठीक है। तो घोड़े है वो शारीरिक शिक्षा और शारीरिक विश्वास। आजकल ये सारा संसार जो है ये इसी पे तो चल रहा है, इंसान की शिक्षा पे ही तो चल रहा है, शारीरिक शिक्षा पे चल रहा है, शारीरिक विश्वास पे चल रहा है। एक शारीरिक विश्वास है आत्मा, एक शारीरिक शिक्षा है नरक, एक शारीरिक शिक्षा है कुछ, एक शारीरिक शिक्षा है कुछ 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 कुछ, ऐसे सब जो हमारे जीवन के सिद्धांत बन जाते हैं। तो ये डैम क्या करता है? घोड़े की एड़ी को, एड़ी क्या होती है? बहुत छोटी सी अपने शरीर की जगह, शरीर की जो घोड़े के भी शरीर की छोटी सी जगह। तो ये डैम क्लास क्या करती है के के एक छोटा सा खिलवाड़ करते, जैसे कोई शिक्षा सत्य की शिक्षा उसमें शारीरिक शिक्षा मिला देते हैं थोड़ी सी, जिससे जो रास्ते पे चलने वाला है वो मिसगाइड हो जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में बाइबल के सत्य का अनुवाद बदल देते हैं, बदल जाता है इनके, जिससे क्या होता है, घोड़ा क्या करता है फिर पीछे को गिर जाता है, पीछे को क्या करता है गिर जाता है। तो इसका इसका मतलब
जिससे उसका सवार पछाड़ कर गिर पड़ता है,
गिर पड़ता है। तो ये गिरने का सिंपल शब्दों में दान क्लास क्या करती है, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा मिला के दूसरे भाइयों को रास्ता भटकने पे मजबूर कर देते हैं, वो अति पवित्र विश्वास से क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी भयानक चीज है, ये परमेश्वर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसीलिए इस कैरेक्टर वाले लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, कट किया, दान नहीं चाहिए। हाँ, तो दान नहीं चाहिए, दान नहीं चाहिए। कौन चाहिए? मनस्से। अभी मनस्से क्या है? मनस्से का मतलब पहले पढ़ते हैं भजन संहिता 45 का 10 और 11।
हे राजकुमारी
सुन और कान लगाकर ध्यान दे,
अपने लोगों को अपने पिता के घर को भूल जा,
अपने लोगों को और अपने घर को पिता को भूल जा। तो मनुष्य का मतलब है भूल जाना, और ये राजकुमारी पता कौन है? राजकुमारी है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन यानी
कलीसिया,
ठीक है। तो ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य ग्रुप में एक बड़ी खासियत होती है भूल जाना। भूल जाना क्या? जो भी इनके जीवन में मुश्किल परेशानी पैसे की हो या शारीरिक शरीर की हो, शारीरिक बीमारियां हो, ये सब भूल के कभी भी अपने जो क्या बोलते हैं, अपने आत्मिक जीवन को इफेक्ट नहीं होने देते। ये कभी भी अपने आत्मिक जीवन को इफेक्ट नहीं होने देते, इनमें भूलने की क्षमता है। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम से ये गुजर के आ रहे हैं, ये भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दान की जगह कौन आता है? मनुष्य। तो ऐसे भी लोग कितने हैं? 12,000 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आठवां है गाद। तो गाद का मतलब क्या है? 49 में पढ़ते हैं 19।
गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा।
वो क्या करेगा? गाद क्या करेगा? चढ़ाई करेगा। तो घाद का मतलब होता है ट्रूप, ट्रूप मतलब सिपाही, सिपाही ट्रूप्स बोलते ना वो इंडियन आर्मी के ट्रूप्स उधर चढ़ गए, तो ट्रूप्स का मतलब होता है सिपाही, एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो दिन रात क्या करते हैं, इसका एग्जैक्ट मतलब हिंदी में मुझे देखना पड़ेगा, नहीं उत्पत्ति 30 का 11 वचन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है।
तब लिया ने कहा अबू भाग्य, इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा।
तो क्या क्या कहा?
तब लिया ने कहा अहो भाग्य,
अहो भाग्य,
इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा।
हाँ, तो गुड, इंग्लिश में इसको गुड फॉर्च्यून बोल सकते, यानी अच्छा अच्छा होना कुछ। तो ये एक ऐसा ग्रुप है, खास करके ये ग्रुप बच्चों का है कि जो जैसे औरतें हैं, औरतों को बाहर प्रचार करने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे और अपने परिवार को सत्य के रास्ते पर परमेश्वर के बारे में चलाने में हौसला देती हैं और हौसला देती हैं। तो ये गाद ग्रुप खास करके बहनों का ग्रुप है। सिस्टर अगर अगर आप ठीक हो तो पंखा चला दो, क्योंकि बहुत वो बोलते बोलते गर्मी लगती है। तो ये गाद ग्रुप है बहनों का ग्रुप, खास करके जो बहनें क्या करती हैं, अपने बच्चों को सत्य के रास्ते पर चलाती हैं, उनको बोलती हैं, हौसला देती है, बेटा तू लगा रहे, ठीक है, जो सत्य के रास्ते में उनमें चलने की मदद और सहायता करते हैं, बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करती हैं। तो ये भी एक काम है, ऐसी भी ग्रुप है 12,000। तो ये भी, लेकिन एक बात याद रखिए, ये सब जितने भी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सत्य के उनके पास ये सत्य होगा, तेरा वचन सत्य है, परमेश्वर की योजना जानते होंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा होगी। ये मैं नॉर्मल लोगों की, नॉर्मल ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नौवा है एशर। हेलो, हाँ कहते हैं क्लास, हाँ चल दी पे जा रहे आज से आ ना, इन्होंने ब्रदर के, ब्रदर जेपी के, ब्रदर जेपी के आ जा। हाँ नहीं नहीं ट्रिपलिंग हो जानी यार, अशेर 49:20।
अशेर जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा।
उत्तम इंग्लिश में है शेल बी फैट, फैट मोटा उत्तम,
और वह राजाओं के योग स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा,
स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। उत्पत्ति 30:13 भी पढ़ लो, उसका 30:13 में नाम पता चले, इसका मतलब पता चलेगा शेर का।
तब लिया ने कहा मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्री मुझे धन्य कहेंगे, इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा।
धन्य हूँ, धन्य, धन्य इंग्लिश में हैप्पी, खुश। तो ये वो ग्रुप है आशेर का ग्रुप जो हमेशा खुश रहते हैं। इनके जीवन में जितना मर्जी कष्ट परेशानी हो, आप इनको मिलो, आपसे एक उनसे मिलने के बाद आपको एक प्रेरणा मिलेगी यार, उसके जीवन में इतना कष्ट, ये खुश रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पौलुस बोलता है, प्रभु में आनंदित रहो फिर कहता हूँ आनंदित रहो, ठीक है। तो ऐसे 12,000 लोग होंगे जो हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे अपनी मुश्किलों में, परेशानियों में, कुछ भी इनके जीवन में चल रहा हो, लेकिन ये जब भी आपको मिलेंगे, आपको इनके जीवन से एक प्रेरणा मिलेगी, खुश रहने वाले। तो ये भी 12,000 होंगे। 108 108,000 हो चुके हैं। तो उसके बाद दसवां है नफ्ताली 49 का 21।
नफ्ताली एक छूटी हुई हिरनी हरनी है, यह सुंदर बातें बोलता है।
हरनी है और सुंदर बातें बोलता है, और इसका मतलब क्या होता है 30:8 में देखो।
तब रहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई, अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा।
तो मल ये है युद्ध, युद्ध करने वाले ये है नफ्ताली। नफ्ताली नाम का मतलब है रेसलिंग, युद्ध। तो ये युद्ध कौन है? ये वो भाई बहन है जो दिन रात प्रार्थना में लगे रहते हैं। प्रार्थना करने वाला ग्रुप, जो सत्य के काम के लिए, कटाई के काम के लिए, जो भाई सच्चाई का काम कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो भाई मुश्किल परेशानियों में है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रेयर वॉरियर्स यानी प्रार्थना करने वाले, जो जिनका युद्ध चलता रहता है प्रार्थना के जरिए। ठीक है, तो ये ज़्यादातर प्रार्थना में लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसा ग्रुप भी है नफ्ताली। उसके बाद 11वां का नाम है जोसफ, और 49:22 में।
फलवंत लता की एक शाखा है।
जोसफ का मतलब होता है फल, फलवंत, फलवंत होना, फल फल लाना।
वह सोते के पास लगी फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं।
तो उत्पत्ति 30:24 में भी पढ़ लो।
इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक और पुत्र देगा।
पढ़ो पढ़ो 24,
बस इंटर है।
नहीं 30 का 24।
20 का 24 ही है।
बोला उसका नाम जोसफ रखा, और बोला उसने मुझे एक और पुत्र दिया। जुड़ना, एक और पुत्र जोड़ दिया, जुड़ना। तो ये ग्रुप वो ग्रुप है जिनका स्वभाव क्या है, फलवंत होना और जोड़ना। इनमें क्या है, बहुत सारे गुण हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉन। इसका मतलब सारे काम कर लेते हैं लेकिन एक में भी किसी के भी मास्टर नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना, बहुत से लोग बिजली का काम भी कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं लेकिन मास्टर किसी के भी नहीं। तो ये ग्रुप वो जोसफ ग्रुप वो है जो फलवंत होता है, जो माइक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिकल वर्क, व्हीकल रिपेयर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब सब काम कर लेते हैं लेकिन मास्टर किसी में भी नहीं है। तो परमेश्वर की सेवा में ये लोग का बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, ये लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जितने भी अरेंजमेंट्स वगैरह सब होते हैं, करते हैं, उनका जिम्मेदारी इन पे होती है। ये बड़ी खुशी खुशी वो करते हैं, और इन्हीं की वजह से संभव हो पाती हैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स और बड़े बड़े सत्य के काम। तो ऐसे लोग भी हैं 12,000 जो फलवंत होते हैं, जो जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 12वां और अंतिम कैरेक्टर बेंजामिन, बेन्यामिन, 49 का 27।
बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है। सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और शाम को लूट बांट लेगा।
तो अभी इसका क्या मतलब है? ये तो आत्मिक इज़राइल की बात हो रही है। आत्मिक इज़राइल पढ़ना है। बेंजामिन का मतलब क्या है? 35:18, उत्पत्ति 35:18।
तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा।
तो पहले इसका नाम बेनोनी था, उसने इसका नाम इसलिए बेनोनी रखा कि ये मेरी मुश्किल का कारण बना, ये पुत्र मेरी मौत का कारण बना, मेरी मुश्किल का कारण बना, इसलिए इसका नाम बेनोनी का मतलब होता है सन ऑफ माई ट्रबल, यानी मेरी मुश्किल का कारण, ठीक है। लेकिन बाद में याकूब ने उसका नाम बदल के बेनोनी का नाम बदल के रख दिया बेंजामिन, ठीक है, हाँ बेंजामिन। तो बेंजामिन का मतलब होता है मेरे दाएं हाथ का पुत्र, दाएं हाथ का पुत्र। तो ये लोग कौन है? ये लोग वो है जो दाएं हाथ का काम करते हैं, जैसे पौलुस के लिए तिमोथी, सिलास, बारनबास, लूका, ये सारे उसके दाएं हाथ के तौर पे काम करते थे। जो तिमोथी था, सिलास था, बारनबास था, लूका था। पत्रस के लिए दाएं हाथ का काम कौन कर रहा था? मरकुस। तो जो दाएं हाथ का काम करते हैं, दाएं हाथ का काम मतलब असली काम जो लगे रहते हैं, वो हैं ऐसे लोग, ऐसे भी 12,000 होंगे, ठीक है। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये 12 नाम में या 12 गोत्र में जो कलीसिया को मिले हैं, इनमें बहुत बड़ा आत्मिक मतलब है, और एक एक नाम के पीछे एक आत्मिक मतलब है, कैरेक्टर है, स्वभाव है, कि कैसा कैसा स्वभाव कलीसिया के 144,000 लोगों में होगा। तो आज हम ये पढ़ने के बाद ये बात कंफर्म करते हैं, बताते हैं कि जो 12 गोत्र हैं सातवें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में, ये कौन है? बुलाए, जो 3 स्टेजेस से फिल्टर लगता है, बुलाए हुए से चुने हुए, चुने हुए से वफादार, वफादारी साबित की तो कलीसिया, यानी 144,000, अगर नहीं तो बड़ी भीड़ है इनकी। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की एक फिक्स गिनती है 144,000, ठीक है, इससे एक भी ऊपर नहीं, इससे एक भी कम नहीं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारी कलीसिया की, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की पढ़ाई का 3रा और अंतिम भाग खत्म होता है। परमेश्वर ही हम सबको आशीष करें। आमीन।